भ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नो मीरिदे मत्तो यार दिव्य ध्वनियो लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे यार ज्ञान पाप कर्म गेद्दो शुद्धवागिदे अमितवाद शक्तियिंद सकल तत्व तिळिदिदे लोकदल्लि वीतराग पूज्य पदवि वंदिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की पेज नंबर 57 पर मनुष्य गति के मनुष्यों के भेदों के संबंध में चर्चा है, चार्ट है, उसको निकालेंगे। मनुष्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते, कैसे? कर्म भूमिज मनुष्य और भोग भूमिज मनुष्य। कर्म भूमिज मनुष्यों में दो भेद करना चाहिए, आर्य खंडज मनुष्य और म्लेच्छ खंडज मनुष्य। आर्य खंडज मनुष्यों को 1 से 14 गुण स्थान होते और म्लेच्छ खंडज मनुष्यों को 1 ही गुण स्थान होता है। गुणस्थान भी साथ साथ ध्यान रखने के लिए ब्रैकेट में दिया गया है। आर्य खंडज मनुष्यों को पुनः दो भेद करना चाहिए, भूचर मनुष्य तीर्थंकर आदि और खेचर मनुष्य विद्याधर मनुष्य। विजयार्द श्रेणियों में 170 विजयार्द पर्वत श्रेणी के मनुष्य, इनके भी गुणस्थान 1 से 14 होते हैं और भूचर मनुष्यों के भी गुणस्थान 1 से 14 होते हैं। भूचर मनुष्य में भी दो भेद करना चाहिए और खेचर मनुष्य में भी दो भेद करना चाहिए, गर्भज और समूर्छन। देखो, गर्भज और समूर्छन मनुष्यों के भेद भूचर मनुष्यों में भी है और खेचर मनुष्यों में भी है। खेचर मनुष्य विद्याधर, खे यानी आकाश, आकाश में चरण ही जिनका उद्योग है, यानी जिनकी जिनका जीवन है, वो खेचर मनुष्य। विद्याधर विजयार्द श्रेणी में रहते हैं ना, वे कभी भी भूमि पर नहीं चलते। जहाँ भी आना जाना हो, उनकी कार गाड़ियाँ विद्याएं हैं, आकाश से चलने वाली कार गाड़ियाँ हैं उनकी। और यहाँ हम लोगों की कार गाड़ियाँ तो भूमि पर चलती है, इसलिए हम भूचर हैं और वो खेचर हैं। गर्भज और समूर्छन, गर्भज जीवों में कितने गुणस्थान होते हैं, तो गर्भज जो जीव होते हैं उनके दो ही अवस्था, पर्याप्त अवस्था और निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था, दो ही अवस्थाएं होती हैं। समूह क्योंकि समूर्छन मनुष्यों का भेद अलग से बता दिया, इसलिए उनको दो ही भेद हैं। और समूर्छन मनुष्यों में लब्धि अपर्याप्तक एक ही भेद है, वहां पर पर्याप्तक जीव नहीं होते। अब समूर्छन मनुष्य जो होते हैं उनके गुणस्थान कितने, समूर्छन मनुष्यों का गुणस्थान एक ही होता है लब्धि अपर्याप्तकों के। और ये पर्याप्तक मनुष्यों, गर्भज पर्याप्तक मनुष्यों के पर्याप्तक अवस्था में 114, निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन गुणस्थान होते हैं। 170 आर्य खंडज मनुष्य और 170 आर्य खंडज आर्य म्लेच्छ मनुष्य, ऐसे गर्भज मनुष्यों के भी दो भेद बनाना चाहिए। गर्भजों में दो भेद, 170 आर्य खंडज आर्य मनुष्य और 170 आर्य खंडज आर्य म्लेच्छ मनुष्य। इधर के इनको, इन्हें आर्य मनुष्यों को कितने गुणस्थान, 114, और 170 आर्य खंडज आर्य म्लेच्छ मनुष्यों के पहला गुणस्थान होता है। तो इनके कौन कौन से भेद हैं, ये देखो, नीचे म्लेच्छ खंडज के भेद बता दिया है, तो पांच भेद बताए हैं। शक जाति मनुष्य, यवन जाति मनुष्य, शवर जाति मनुष्य, आदिवासी जाति और आर्यत्व भ्रष्ट जाति, ये भी एक है। हाँ, यवन मने शक जाति, एक जंगल में रहने वाले सभी जातियां हैं। शबर जाति, आदिवासी, ये जंगल में रहते हैं सभी। और आर्यत्व भ्रष्ट जाति, यानी आर्यत्वपना चला जाए तो भी म्लेच्छ के कोठी में ही आ जाता है। अब इसमें 170 आर्य खंडज आर्य मनुष्यों में कितने भेद हैं, तो इसमें दो भेद करना चाहिए, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित आर्य। आर्य खंड के मनुष्यों में दो भेद, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित आर्य। रुद्धि रहित आर्य के 8 भेद हैं और रिद्धि प्राप्त आर्य के 8 भेद हैं, रिद्धि रहित आर्य के 5 भेद हैं। कौन कौन से 8 भेद, बुद्धि रिद्धि, चारण रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। ये तप के कारण से मनुष्यों को रिद्धि प्रकट होती हैं। ये रिद्धियां उत्तम सहनन वाले मनुष्यों को ही प्रकट होती हैं। उत्तम सहनन वाले, पहला, दूसरा या तीसरा सहनन चाहिए इन रिद्धियों को धारण करने के लिए। और रुद्धियां प्रगट किसको होती हैं, तो सम्यक दृष्टि जीवों को ही होती हैं और सैमी जीवों को होती है। रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के हैं, कौन कौन से, जात्यार्य, क्षेत्रार्य, कर्मार्य, दर्शनार्य और चारित्रार्य, ये 5 भेद हैं। जात्यार्य यानी जाति में पैदा होने मात्र से जात्यार्य, किस जाति में, आर्य खंड की जो जाति है, आर्यत्व की जो जाति है, उनकी कुल वंश परंपरा में उत्पन्न होने से ये जात्यार्य हैं, जात्यार्य। और क्षेत्रार्य कौन है, ये क्षेत्र में पैदा होने से क्षेत्रार्य, जैसे भारत भूमि पर पैदा हो गए, अमेरिका आदि में पैदा नहीं हुए, तो ये क्षेत्रार्य हैं। फिर कर्मार्य, कर्मार्य मतलब आर्य लोग जो कार्य करते हैं, आर्यत्व के कार्य करते हैं, ऐसे आर्यत्व के कार्य करने वालों को कर्मारी कहते हैं। और फिर दर्शनारी, दर्शनारी कौन? सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सम्यक्तों का पालन करने वाले आर्यों को दर्शनारी कहते हैं। और फिर चारित्रारी, चारित्रारी चारित्र संयम, संयम को धारण करने वाले चारित्रारी। जैसे प्रतिमाधारी है एक देश, अनुवर्तों को पालन करने वाला गृहस्थ चारित्रारी है, मुनि महाराज चारित्रारी हैं, और दर्शनारी अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य दर्शनारी कहलाता है। इनको छोड़कर ऊपर वाले सभी क्षेत्रार्य, कर्मार्य, जात्यार्य इत्यादि। कर्मार्य यानी आर्यत्व का जो कर्म होता है ना, उन कर्मों को करना। आर्यत्व का कर्म क्या है? आर्यखंड में पैदा हुए हैं तो किस लिए हुए हैं हम? आर्य धर्म को पालन करने के लिए। आर्य धर्म कौन सा धर्म है? अहिंसा धर्म आर्य धर्म है। तो अहिंसा का व्यवसाय, अहिंसा का ही उद्योग करना चाहिए। यानी जिस व्यवसाय उद्योग में बहुत बड़ी हिंसा होती है उसको आर्य लोग नहीं करते। जैसे चप्पल आदि का व्यवसाय, चमड़े के चप्पल आदि का व्यवसाय, और ये रेशम के वस्त्र आदि का व्यवसाय, और जीवों को मारने आदि जो औषधियां होती हैं उनका व्यवसाय। फसलों को मारते हैं ना औषधि मारने पर, कीटनाशक औषधियां, कीटनाशक औषधियों को मारने से जीव सब मर जाते हैं। कौन से जीव मरते हैं? ये केंद्रीय भी मरते हैं और त्रस जीव भी मरते हैं। ऐसी औषधियां आती हैं जो कि उस औषधि को सिंचन करने पर या मारने पर वनस्पति उग नहीं सकती, ऐसी औषधियां भी हैं। और वनस्पति के ऊपर त्रस आदि जीव जो उत्पन्न होते हैं, उन त्रस जीवों को वनस्पति को खाना ले और अपना फसल न बिगड़े इसलिए भी लगाते हैं औषधियों को। तो वो औषधियाँ, इन दोनों प्रकार के औषधियों को जो व्यापार में, व्यवसाय आदि में उपयोग नहीं लेता, उपयोग में नहीं लाता, वो आर्य कहलाता है, कर्मार्य कहलाता है। और लाता है तो वो कर्मार्य नहीं है। तो वो कौन किस में आएगा? जात्यार्य में भी नहीं आएगा। जात्यार्य तो जाति के कारण से, जाति में पैदा हुआ है तो वो भी नहीं करेगा। यदि करता है तो उचट जाएगा वहां से, जात्यारी से भी। आर्य तो भ्रष्ट में आएगा, ये पांच में आएगा, तो वो आर्य म्लेच्छ में वो हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। जात्यारी से च्युत हो जाए तो आर्य म्लेच्छत्व में आएगा, क्षेत्रार्य में च्युत हो जाए तो आर्य मिलच्छ, जो को यहाँ से जा करके अमेरिका में बस जाते हैं, आर्यखंड को त्याग कर आर्यों के बीच में रहना छोड़कर वहाँ पर जा करके व्यवसाय उद्योग के लिए, पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए, केवल पैसा ही, एक ही उद्देश्य, पैसा पैसा पैसा, ऐसा वहाँ जा करके रहते हैं। और वहाँ पर कुछ भी न धर्म है, न कर्म है, न संस्कार है, न माहौल है, न कोई सत्संग है, कुछ भी नहीं है, केवल भौतिक जीवन जीने के लिए जाओ तो अमेरिका आदि में जाकर के बस जाते। तो ये किस में आएंगे? आर्यत्व भ्रष्ट जाति यानी क्षेत्र भ्रष्ट, आर्यत्व क्षेत्र भ्रष्ट जाति में आएंगे। जात्यार्य, क्षेत्रार्य, कर्मार्य और दर्शनार्य, दर्शनार्य ने सम्यक दर्शन को पालन करने वाले, और चारित्रार्य ने प्रतिमाधारी और मुनि महाराज, ये रिद्धि रहित आर्य के भेद हो गए। इनको रिद्धियां नहीं होती, रुद्धियां प्रथम तीन सहन वालों को रुद्धियां प्रकट होती हैं। किसको? प्रथम तीन सहन वालों को, उनको भी हो ये नियम नहीं है। प्रथम सहनन उत्तम सहनन हो और रिद्धि न हो तो रिद्धि रहित आर्य में आएंगे, किसी पांच में एक में आएंगे, पांच में से किसी एक में आएंगे। और छह सनन वाले जो चौथा पांचवा और छठा सनन वाले मनुष्य हैं, ये नियम से रिद्धि रहित आर्य में ही आते। सनन की अपेक्षा से देखो तो तीन सनन वाले तो नियम से रिद्धि रहित आर्य की कोटि में आते हैं, पांच वेदों में इनको डाल सकते हैं। ये हो गया मनुष्यों का भेद। और इधर अब देखेंगे अपन म्लेच्छ खंडज मनुष्यों के, जो ये म्लेच्छ खंड होते हैं केवल प्योर म्लेच्छ हैं ये। प्योर म्लेच्छ कौन? तो एक आर्यखंड और पांच म्लेच्छ खंड होते हैं ना नक्शा में। नहीं 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 क्या हाँ खेचर मनुष्य रह गया क्या? हाँ खेचर मनुष्य 170 विजयार्द पर्वत श्रेणी के मनुष्य, 1 से 14 गुणस्थान वाले, 1 से 14 गुणस्थान वाले होते हैं खेचर मनुष्य। खेचर अर्थात विजयार्द पर्वत में रहने वाले मनुष्यों को हमेशा कोई न कोई किसी न किसी को केवल ज्ञान, मन परिज्ञान, अवधि ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान, द्वादश्यांग पाटी, द्वादश्यांग केवली वहाँ पर निरंतर रहते हैं, वहाँ काल का अभाव नहीं है, मोक्ष जाने का काल का अभाव नहीं है, निरंतर मोक्ष होता रहता है। इन मनुष्यों में सम्मूर्छन मनुष्य भी हैं, गर्भज भी हैं और सम्मूर्छन भी हैं, दोनों भेद समझना चाहिए। और गर्भज जो होते हैं उनके भी 8 भेद हैं, 170 आर्यखंडज और 170 आर्यखंडज आर्यम्लेच्छ, ऐसे 2 भेद वहां पर भी बनेंगे। ये दोनों तरफ लेना है हा? हाँ दोनों समान है, दोनों लेना चाहिए, इसको लगाते समय दोनों लेना चाहिए और इसको भी लगाते समय दोनों लेना चाहिए। तो सम्मूर्छन मनुष्य, सम्मूर्छन मनुष्य इनके गुणस्थान एक ही रहता है और ये निवृत्ति अपर्याप्तक वाले नहीं कहलाते, क्योंकि इनको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है और निवृत्ति अपर्याप्त वालों को पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है, इसलिए एक ही गुणस्थान। और ये श्वास के 18 भाग में नियम से मरण करते हैं, एक अंतर्मुहूर्त में कितने भव धारण करते हैं, ये 18 नहीं, एक श्वास में 18 एक श्वास के 18वें भाग में इनका मरण होता है, इतना इतनी छोटी इनकी आयु होती है, किंतु एक अंतर मुहूर्त में कितने भव धारण करते हैं? तो 8 आया था ना एक बार, पंचेंद्री हैं ये मनुष्य हैं, पंचेंद्री त्रिरंच, पंचेंद्री मनुष्य, ये सम्मूर्छन जो होते हैं लब्धि पर्याप्तक वाले, ये 8 भव धारण करते हैं। आया था एक बार, दूसरा चार्ट पढ़ के बताया था, अंदर है वो, इसी में चर्चा हो गई है उसकी। 8 भव धारण करते हैं, इनको सम्मूर्छन मनुष्य कहते हैं। कहाँ रहते हैं? मल मूत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्य कहलाते हैं। 170 आर्य खंडज आर्य मनुष्य के मल मूत्र में जन्म लेने वाले मनुष्य, इसको आधार दिया है तिलोपन्नति 4 चौथा अधिकार गाथा नंबर 2948 जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैसी, यानी जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, कोश में भी आया है ये चौथा भाग 126 पेज नंबर और 126-127 वहां पर ये पढ़ने को मिल जाएगा। अब इधर चलते म्लेच्छ खंडज मनुष्यों के गुणस्थान कितने? पहला, ये नियम से गर्भज ही होते हैं, इनमें 2 भेद नहीं है, सम्मूर्छन नहीं होते ये। म्लेच्छ खंडों में रहने वाले मनुष्य समूर्छन नहीं होते। देखो आदिवासियों में तो समूर्छन भेद बनेगा, यहाँ म्लेच्छ आर्य खंडज म्लेच्छ मनुष्यों के दोनों भेद हैं, समूर्छन भी है और गर्भज भी है, किंतु जो प्योर म्लेच्छ खंड कहलाते हैं इनमें रहने वाले मनुष्यों के दो भेद नहीं हैं, केवल ये गर्भज ही होते हैं, समूर्छन नहीं होते, समूर्छन नहीं होते। चले आगे, गर्भज में पर्याप्तक अवस्था और निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था, हाँ निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था होती है, समूर्छन अवस्था इनकी नहीं होती। सूचना दी है ब्रैकेट में, समूर्छन नहीं। आर्य खंड 170 गुणले 5, यानी एक एक आर्य खंड के पीछे पांच पांच म्लेच्छ खंड हैं, तो टोटल कितने म्लेच्छ खंड हैं? 850, 850 म्लेच्छ खंड बनते हैं। इनकी विशेषता ये नीचे बताए, विशेष 850 म्लेच्छ खंडों में गर्भज मनुष्य होते हैं, समूर्छन मनुष्य नहीं होते, तथा संगी असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक गर्भज जलचर थलचर नवचर तिर्यंश जीव होते हैं, असंगी होते हैं, संगी भी होते हैं और ये पंचेंद्रिय हैं, पर्याप्तक हैं, पर्याप्तक होते हैं, परंतु हाँ मतलब जलचर, जलचरों में तीनों है ना, संगी असंगी पर्याप्तक अपर्याप्तक, थलचर में संगी असंगी पर्याप्तक अपर्याप्तक, और नवचर में संगी असंगी पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों हैं। तो उनमें से पर्याप्तक तो होते हैं लेकिन अपर्याप्तक नहीं होते, यानी समूर्छन नहीं होते। पर्याप्तक तिर्यंश मनुष्य तो होंगे और तिर्यंश भी होंगे। समूर्छन मनुष्य नहीं होते, संगी असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक गर्भ जलचर थलचर नवचर तिर्यंश जीव होते हैं, परंतु संगी असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जलचर थलचर नवचर तिर्यंश जीव नहीं होते, तथा विकलत्रय पर्याप्तक अपर्याप्तक तिर्यंश जीव नहीं होते। विकलत्रय तो पर्याप्तक भी नहीं होते अपर्याप्तक भी नहीं होते। विकलत्र यानी द्विइंद्री तीन इंद्री चतुरिंद्री, म्लेच्छ खंडों में मक्खियां नहीं होती, मच्छर नहीं होते, अली वगैरह नहीं होते, वहां के धानों में ये त्रिवुला है, त्रिवुला त्रिवुला जार में उत्पन्न होते हैं ना, त्रिवुला, त्रिवुला को क्या बोलते हैं मराठी में, नुशी, कन्नड़ में नुशी बोलते हैं। कितना अच्छा, देखो साल भर भी ज्वार रखे म्लेच्छ खंड के लोग तो उसमें कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, कैसे भी रखो कहीं भी रखो, हाँ पानी गिर जाए तो सड़ सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन उसमें जीव उत्पन्न नहीं होंगे। धान्यों में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो विकलत्रय होते हैं, द्विइंद्री और तीन इंद्री, चतुरिंद्री तो उड़ने वाले जीव, मक्खी मच्छर आदि, वो धान्य में नहीं होते। अच्छा, जब धान्य पकता है उस समय वो पंख वाले जीव तो होते हैं पकते समय, वो चौरेंद्री हैं, वो भी नहीं है, पकते समय में भी उनको कोई रोग नहीं है। तो औषधि कीट, कीट औषधि वहां पर मारते हैं क्या? नहीं, ये पाप ही नहीं होता उनको, उन्हें मारना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा यहां हो जाए तो कितना अच्छा, हिंसा से बच सकते। म्लेच्छ खंड हो करके भी देखो वहां पर ये विकलत्रय नहीं होते, एक विशेष बात है, पर्याप्तक भी नहीं होते, लब्धि अपर्याप्तक भी नहीं होते। देखो पर्याप्तक हो तो ही लब्धि अपर्याप्तक होते, पर्याप्तक हो तो ही लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, क्योंकि द्वि इंद्रिय आदि जीव पर्याप्तक हैं, ये जो मक्खी है, मक्खी मलमूत्र करेगी तो उसमें अपर्याप्तक मक्खी जाति के जीव उत्पन्न होंगे। पर्याप्तक के बिना अपर्याप्तक जीव कैसा पैदा होंगे? तो अपर्याप्तक तो वैसे ही नहीं है, पर्याप्तक भी नहीं है, इसलिए अपर्याप्तक भी नहीं है। अच्छा, वहां उसमें मिलिच खंड में त्रिरंच पर्याप्तक होते हैं कि नहीं? पर्याप्तक होते हैं, संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। जलचर, थलचर, नभचर तीनों प्रकार के वहां पर संगी असंगी जीव हैं। जल में रहने वाले, भूमि पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले, ये संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तो होते हैं, किंतु इनके मलमूत्र में मलमूत्र है क्या? नहीं, इनको है, मलेच्छखंड में मलमूत्र करते हैं वो, लेकिन इनके मलमूत्र में संगी पंचेंद्री या असंगी पंचेंद्री सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति नहीं है, ये विशेषता है। मलेच्छखंड को समझते समय कुछ बातें ये ध्यान में रखना चाहिए, उनके मलमूत्र में क्या नहीं होते? सम्मूर्छन जीव नहीं होते, वही केवल होते हैं, वही केवल होते। अब विकलत्रय नहीं होते, विकलत्रय शरीरधारी भी नहीं होते, और उन शरीरधारी के मलमूत्र में होने वाले सम्मूर्छन जीव भी नहीं होते, ये ध्यान में रखना। और ये कहां? 850 सभी मलेच्छखंडों में, 170 आर्यखंड हैं, तो एक एक आर्यखंड के पीछे पांच पांच मलेच्छखंड हैं, और ऐसे 850 बनते हैं। उन सभी मलेच्छखंडों में ये जीव नहीं होते, सम्मूर्छन नहीं, और विकलत्रय पर्याप्तक अपर्याप्तक नहीं, परंतु एकेंद्री होते हैं क्या? नहीं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ये पर्याप्तक भी हो तो भी सम्मूर्छन कहलाते हैं, और अपर्याप्तक हो तो भी सम्मूर्छन कहलाते हैं। एकेंद्री जीव, पंच स्थावर का एक जीव, तो ये तो लोक में सर्वत्र हैं, इनसे रहित तो कोई स्थान ही नहीं है तीन लोक का। तो मलेच्छखंड में भी हैं, भोग भूमि में भी हैं, सब जगह हैं, आर्यखंड में भी हैं, सभी जगह हैं। तो वो सम्मूर्छन होते हैं और ये सम्मूर्छन क्यों नहीं होते, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। क्या एकेंद्री पर्याप्तक सम्मूर्छन है? एकेंद्री जीव जो भी पर्याप्तक है, वनस्पति होती है क्या? नहीं, वहां वनस्पति नहीं हो तो खाएंगे क्या? मलेच्छखंड के लोग, वहां भी खेती होती है, वनस्पति उगाते हैं, तो ये वनस्पतियां जितनी होती हैं, ये सम्मूर्छन है कि गर्भज है? सम्मूर्छन है। एकेंद्री से लेकर चौरेंद्री तक तो नियम से जीव सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं, तो इनमें से एकेंद्री तो सम्मूर्छन है, और वहां विकलत्रय सम्मूर्छन उत्पन्न नहीं हो रहा है, न पर्याप्तक में उत्पन्न हो रहा है, न अपर्याप्तक में, किंतु एकेंद्री पर्याप्तक और सम्मूर्छन कैसे उत्पन्न होते हैं वहां? उस वातावरण में देखो, यहां पर भी आप देखते हैं, किसी भी चीज को फ्रिज में रखो तो वहां के वातावरण में विकलत्रय उत्पन्न नहीं होंगे। विकलत्रय यानी द्विइंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चौत्रिंद्री जीव उत्पन्न नहीं होते फ्रिज में, और बाहर रख दो तो उत्पन्न होते हैं। तो स्थान का कितना फर्क है, वहीं का वहीं, 2 इंच इधर रखो तो बाहर हो जाता है 2 इंच उधर रखो तो अंदर हो जाता है, 2 इंच में ही एक जगह उत्पन्न होते हैं और एक जगह उत्पन्न नहीं होते, एक क्षेत्र विशेषता है। एकेंद्री जीवों के उत्पत्ति स्थान के योनि स्थान बनेंगे मलेच्छखंड में, परंतु द्विइंद्री उत्पन्न होने लायक माहौल वहां है नहीं, उसका माहौल चाहिए ना, वो नहीं बनता है, इसलिए द्विइंद्री उत्पन्न नहीं होते। इस अपेक्षा से देखो तो म्लेच्छ खंड के लोग आर्य खंड के लोगों से बहुत कम पाप करते हैं, द्रव्य पाप, भाव पाप कितने भी करते हो इससे कोई मतलब नहीं, सातवें नरक वहां से भी जाते हैं और यहां से भी जाते हैं, लेकिन जीव हिंसा के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ के लोग बहुत जीव हिंसा करते, फसल उगाने के लिए कितनी औषधियां मारनी पड़ती और वहां औषधि मारे बिना ही फसल आ जाती, तो हिंसा ज्यादा हो गई ना इधर। हाँ देखो देखो, बहुत 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 बढ़िया उदाहरण, फ्रिज में कटा हुआ थोड़ा सा वो भी रखें तो वो बड़ा होने लगता है, इसका मतलब वहां पर एक इंद्रिय जीव आ सकते हैं। एक इंद्रिय जीव वनस्पति, एक इंद्रिय जीव आने के लिए शीतल वातावरण चलता है, हिमालय में भी वनस्पति, लेकिन हिमालय में आपको द्विंद्रिय जीव नहीं मिलेंगे, बर्फ के स्थान पर वहां तीन इंद्रिय जीव मूंगी वगैरह नहीं मिलेंगी हिमालय में, तो यहीं का यहीं देखो एक इंद्रिय तो उत्पन्न हो रहे हैं, समूर्छन है वो भी, और यहां पर द्विंद्रिय ये भी समूर्छन है, तो समूर्छन समूर्छन में फर्क है, इन जीवों को एक जगह योनि स्थान बनता है और एक जगह योनि स्थान नहीं बनता। द्विंद्रिय जीव मनुष्य भी देखो बच नहीं सकता, वहां जाए तो त्रस है, त्रस जीव उत्पन्न नहीं होते, हिमालय में मनुष्य नहीं बच सकेगा ऐसा खुला, और बचने के साधन ले करके बच सकता है लेकिन वैसा नहीं बच सकता, बहुत हिम है। मतलब मनुष्य 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 प्राणी तो होते हैं, त्रिरंच प्राणी, उनमें जाति है, उनमें नाना प्रकार की योनियां हैं, नहीं नहीं त्रिरंचों के देखो, त्रिरंचों के अंदर अनेक प्रकार की योनियां हैं, एक को शीत चलता है और एक को शीत नहीं चलता, गाय भैंसे वहां टिक नहीं सकती, परंतु हिम प्रदेश में रहने वाले जो याक वगैरह हैं ये प्राणी हिम में ही टिकते हैं, शीत योनि के जीव हैं वो वहां टिकते हैं, शीत योनि के यहां नहीं टिकते, याक वगैरह यहां नहीं रहते रह सकते, क्योंकि यह उष्ण योनि है, ये फर्क आ जाता है। नहीं वो अलग बात है, कर्म भूमि में सर्वत्र अकाल मरण है, कर्म भूमि में सर्वत्र अकाल मरण है, म्लेच्छखंड कर्म भूमि है क्या नहीं है, तो अकाल मरण भी है, भोग भूमि में अकाल मरण नहीं है, देव गति में अकाल मरण नहीं है, नरक गति में अकाल मरण नहीं है, इन तीन क्षेत्रों में अकाल मरण नहीं होता जीवों को, ये क्षेत्र विशेषता है। अब चलते भोग भूमिज मनुष्य, इनको देखते, भोग भूमिज मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, भोग भूमिज मनुष्य 30 भोग भूमिज मनुष्य, 30 यानी कहाँ कि ये नहीं कहाँ रहते हैं, 30 भोग भूमि कहाँ होती है, ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप में, ये ढाई द्वीप में ही हैं, यहाँ पर जो भी भोग भूमि यहाँ हैं इन सब को गिनेंगे तो 30 हो जाती है, 30 दस उत्तम, 10 मध्यम, 10 जगन, ये 30 हो गए, क्योंकि मनुष्य बाहर नहीं है इसलिए 30 भोग भूमि में मनुष्य रहते हैं। मनुष्यों के भोग भूमियां कितनी, ये प्रश्न आने पर क्या कहेंगे, 30 जगन में भी रहते हैं, मध्यम में भी रहते हैं और उत्तम, वो भी जगन में कहां रहते हैं, तो ढाई द्वीप के भीतर जो भोग भूमियां जगन भोग में वहां रहते हैं, किंतु ढाई द्वीप के बाहर रहने वाली भोग भूमियों में, जगन भोग भूमियों में मनुष्य नहीं रहते। भोग भूमिज मनुष्य 30 भोग भूमिज गुणस्थान कितने हैं? 1 से 4। ये नियम से गर्भज होते हैं। गर्भ जन्म ही केवल है, इसलिए एक ही वेद है। अब इनमें गर्भज जीवों को पर्याप्तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक दो ही अवस्थाएं हैं, सम्मूर्छन भेद वहां नहीं है। तो भोग भूमि 30 भोग भूमि कैसे बनती है? यहाँ देखो, उत्तम भोग भूमिज मनुष्य, मध्यम भोग भूमिज मनुष्य और जगन्य भोग भूमिज मनुष्य, ये 3 प्रकार के मनुष्य हो गए। भोग भूमि के मनुष्यों में यदि भेद करना है तो 3 भेद करना पड़ेगा, उत्तम भोग भूमि में रहने वाले, मध्यम भोग भूमि में रहने वाले और जगन्य भोग भूमि में रहने वाले, ये हो गया। दूसरा भेद है कुभोग भूमिज मनुष्य, वहां पर भी मनुष्य पाए जाते हैं। तो कुभोग भूमियों की संख्या कितनी है? 96। 96 अंतर द्वीपज म्लेच्छ मनुष्य, वो म्लेच्छ कु मनुष्य, इनको म्लेच्छ भी कहा है, इनको म्लेच्छ भी कहा है। क्यों कहा? क्योंकि इनमें जन्म लेने के लेते समय धर्म नहीं रहता, यानी वहां जन्म लेते समय नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। देखो, मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। जहां जन्म लेते समय मिथ्यात्व के साथ ही जाना पड़ता है, वो म्लेच्छ के कोठे में डाल दिया। उसी प्रकार इधर भी समझना चाहिए, देवगति की अपेक्षा से जन्म के समय नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्मते हैं। ये नियम कहाँ है? भवनत्रिक में। तो भवनत्रिक के देवों को सुदेव नहीं माना, देव दुर्गति के देव माना। देव में भी दुर्गति है और सदगति है। देवों में 2 पार्ट करो, दुर्गति के देव, सुगति के देव। देवों में देव दुर्गति कौन सी? भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी, ये देव देव दुर्गति के देव कहलाते हैं। हाँ, समझना तो पड़ेगा ना, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता। जैन धर्म की उपलब्धि ज्ञान से ही होगी, घबराना नहीं। ये सब कुछ क्यों आ रहा है? अपनी गलती को सुधारना चाहिए। हाँ, सुन करके जिनवानी सुन करके घबराओगे। देव में भी दुर्गति, ये तो हम मानते थे इनको, अच्छे देव मानते थे, तो तुम मानते थे। लेकिन जिनवानी क्या है और हम क्या मानते हैं, यही तो तुलना करना है ना। हमारी मान्यता गलत थी क्या सही थी, ये तो ज्ञान होता है ना, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। कुभोग भूमिज मनुष्य 96 प्रकार के, ये भी कुभोग भूमियों में जन्म लेते समय नियम से पहले गुणस्थान के साथ या दूसरे गुणस्थान के साथ वहां पैदा होते, इसलिए इनको म्लेच्छ की कोटी में रखा है। भोग भूमि जी के मनुष्यों में 2 भेद हो गए, सुभोग भूमि कुभोग भूमि, जैसे देवों में सुदेव और कुदेव। कोई भवनत्रिक में जन्म लेता है तो कहा जाता है कुदेवों में जन्म हो गया। कुदेवों में जन्म हो गया का मतलब क्या है अर्थ? वहां जाकर के सम्यक दर्शन भले ही बाद में पैदा कर लें, लेकिन जन्म लेते समय सभी देव मिथ्यात्वी ही रहते हैं। ऐसे कुयोनि में, मिथ्यात्व वाली योनि में जन्म हो गया, ऐसा कहा जाता है, इसलिए उसको देव दुर्गति माना। देव दुर्गति का मतलब जन्म लेते समय जिस गति में नियम से मिथ्यात्व होता है उस गति का नाम देव दुर्गति। ऐसे ही जिस मनुष्य गति में जाते समय नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जाना पड़ता है, उस गति को, उस मनुष्य के गति को कुमानुष कुमनुष्य गति, कुमनुष्य गति कहते हैं। तो ये कुमनुष्य जितने रहते हैं ना, ये म्लेच्छ के समान कहलाए, म्लेच्छ के समान कहलाए। क्यों म्लेच्छ के समान कहलाए? सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, रहस्य की बात आ गई। इनको कुमनुष्य क्यों कहा, म्लेच्छ ऐसी संज्ञा क्यों मिली? जैसे म्लेच्छ खंड में जन्म लेते समय, मनुष्य होते समय नियम से पहला गुणस्थान होता है, मिथ्या तो सात जन्म लेते हैं, वैसे ही कुवभूमि में जन्म लेते समय, जन्म के काल में नियम से मिथ्या तो गुणस्थान ही होता है, इसलिए कुमनुष्य बन गए। म्लेच्छों को तो कुमनुष्य कहेंगे ही, किंतु कुवभूमि के मनुष्यों को भी कुमनुष्य कहेंगे, क्योंकि जन्म के समय उनको भी पहला गुणस्थान और इनको भी पहला गुणस्थान, इसलिए कुमनुष्य कहा। उनको कुदेव कहा, और स्वर्ग में जन्म लेने वाले देवों को सुदेव कहा, और म्लेच्छ खंड में और कुवभूमि में जन्म लेने वालों को, मनुष्यों को कुमनुष्य कहा। वो भी म्लेच्छ, ये भी म्लेच्छ, पर कुमनुष्य कहने की जो पद्धति है कुवभूमि वालों के लिए है, किंतु म्लेच्छ खंड वालों के लिए नहीं है। कह सकते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जन्म के समय में पहला गुणस्थान ही होता है, कह सकते हैं। परंतु म्लेच्छ ही कह रहे हैं तो फिर कुमनुष्य कहने की जरूरत क्या है? म्लेच्छ मनुष्य मतलब जो जन्म के काल में नियम से पहले गुणस्थान के साथ ही जन्मता है, ये क्षेत्र विशेषता है, क्षेत्र विशेषता के कारण से वो कुमनुष्य ही है। कुभोग भूमि जो मनुष्य, छानो अंतरद्वीपज म्लेच्छ कुमनुष्य, गुणस्थान कितने, एक से चार, पर्याप्तक की अपेक्षा से, यानी शरीरधारी बनने के बाद पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा भले ही उत्पन्न हो सकता हो, परंतु जन्म के काल में तो मिथ्या तो गुणस्थान के साथ ही जन्मते हैं। इनके इनमें भी समूर्छन भेद नहीं है। कुभोग भूमि में, सुन रहे ना, कुभोग भूमि में समूर्छन जीवों की उत्पत्ति नहीं, जैसे म्लेच्छ खंड में, जैसे म्लेच्छ खंड में समूर्छन मनुष्य नहीं होते, उसी प्रकार इनमें भी नहीं है। दूसरी बात, इनका मलमूत्र है क्या? कुमनुष्यों के, कुभोभूमि के मनुष्यों के मलमूत्र होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है तो समूर्छन जीवों की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं आता। अगर मलमूत्र होता भी तो भी यहाँ इस क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ समूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। म्लेच्छ खंड में मलमूत्र है मनुष्यों के, लेकिन उनके मलमूत्र में समूर्छन जीव नहीं होते। कितनी विशेष बातें पता चल रही है। ये जीव सिद्धांत है। जीव किस योनि में, किस क्षेत्र में जन्म लेने पर क्या क्या विशेषता को धारण करता है, ये सब पता चलता है। अगर अपन ही म्लेच्छ खंड में होते तो अपने मलमूत्र में समूर्छन जीव नहीं होते। अपन आर्य खंड में आए हैं इसलिए समूर्छन जीव विनियम से पैदा होंगे। तो ये क्षेत्र विशेषता है, है? किसको? कुभोग भूमि में और सुभोग भूमि में रहने वाले मनुष्यों को मलमूत्र नहीं होता, और आर्य खंड में भी रहने वाले तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले या 63 शलाका पुरुषों के रूप में जन्म लेने वाले मनुष्यों को भी मलमूत्र नहीं होता। ये शरीर विशेषता है, ये शरीर विशेषता है। तीर्थंकर का शरीर पाकर के जन्म लेओगे, आपके आत्मा जन्म लेगी तो शरीर विशेषता के कारण मलमूत्र नहीं होगा। और शरीर विशेषता को उत्पन्न करने वाला कौन? तो कर्म, नाम कर्म। ये कर्म का खेल है। क्यों नहीं होता? तो शरीर उस टाइप का है। शरीर किसने दिया? कर्म ने दिया। तो कर्म ने शरीर ऐसा दिया है तो मलमूत्र कैसे होगा? मलमूत्र रहित शरीर को दिया आपको। तो पर्याप्तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक दोनों दो ही अवस्थाएं बनती हैं। अच्छा, ये मनुष्य कहाँ कहाँ रहते हैं नीचे दिया, उसके अपेक्षा से भेद बनेंगे। लवण समुद्र के 48 अंतर्द्वीपज कुमानुष और कालोदधि समुद्र के 48 अंतर्द्वीपज कुमानुष दो जगह रहते हैं, दो समुद्र में, भूमि पर नहीं रहते। ये समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं ऐसा भी नहीं लेना, समुद्र में रहने वाले द्वीपों में रहते हैं, चारों तरफ जल और मध्य में द्वीप, ऐसा। हाँ, ये है, ये देखो, ये द्वीप हैं, ये कुभोग भूमि के कुभोग भूमिया हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हैं, ये 24 हैं टोटल, 24 नहीं 24, हाँ ये 24 ही बनते हैं, इस तट पर 24 और इस तट पर 24, ऐसे 48 बनते हैं, ये 48, किंतु ये छोटे बड़े हैं, ये संयोजन वाला क्षेत्रफल, इसका 100 योजन है, इसका क्षेत्रफल 50 योजन, इसका 50 योजन, इसका 25 योजन, इसका 55 योजन, इसका 25 योजन, देखो कितने भेद हैं, 100, 50, 55 और 25, चार प्रकार के कुभोग भूमिया हैं, 100 योजन वाले, 55 योजन वाले, 25 योजन वाले और 50 योजन वाले, इस प्रकार चार प्रकार के हैं, क्षेत्रफल बिल्कुल करेक्ट उतना ही, चार ही प्रकार का बनेगा, अलग अलग नहीं, 96 का। इनमें मनुष्य पाए जाते हैं, एक योजन का मतलब कितना, महायोजन लेना पड़ेगा इनको, महायोजन से ही लेते हैं, समुद्र द्वीप वगैरह नापने के लिए महायोजन का उपयोग होता है, महायोजन एक योजन का 4000 मील, 4000 मील, तो 100 योजन का 4 लाख बनेगा, 4 लाख मील, किलोमीटर में करेंगे तो ज्यादा बनेगा, हाँ, 4-5 लाख लगभग, 6,40,000 किलोमीटर, 6,40,000 किलोमीटर, यानी आज की दुनिया कितनी है, 6 लाख है क्या किलोमीटरों में, नहीं है, तो इस दुनिया से बड़े बड़े द्वीप हैं, वो इस दुनिया से भी बड़े बड़े हैं। अब 25 योजन वाले जो होते हैं, 25 योजन, वो लगभग इसके बराबर बनेंगे, 1 लाख तो होगा ना, 1 लाख किलोमीटर नहीं क्या, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव कितना है, कितने किलोमीटर का है, 16,000, तो बहुत ही छोटा है ये, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, नहीं हजारों में होगा, लाख तक नहीं पहुंचेगा, हजारों में हो सकता है, क्यों 16 कितना, 16,000 दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव कितना किलोमीटर आया, नहीं हजारों में होगा, लाखों में तो नहीं है ना, हाँ लाखों में तो नहीं है, यानी इन कुभोग भूमियों से भी छोटा है ये जगत, हाँ 20,000 ज्यादा होगा, 20,000 बहुत कम, 40,000 है परिधि गोलाई, हाँ बहुत छोटा है ये, बहुत छोटा है। अपन छोटी दुनिया में बैठे हैं और अपन शरीरधारी हैं, हमारा शरीर भी बहुत छोटा है। क्या बोले? कितना है? वही 20,000। हाँ, कल जर देख के आना प्रामाणिक रूप से कितना है ये, इसकी परिधि कितनी और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव कितना, इतना देख लेना। कल देख के आना, अटलास में होगा ना। हाँ, मालूम होना चाहिए। वो भूमियां इस दुनिया से बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े हैं वो। और क्योंकि इतने बड़े हो तो ही तो चल सकेगा। वहां मनुष्यों की ऊंचाई कितनी है? 500 धनुष के मनुष्य हैं। और फिर भूमि बड़ी चाहिए कि छोटी चाहिए? बड़ी चाहिए। एक एक मनुष्य को लेटने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का जमीन चाहिए। लेटने के लिए, लेटे तो 1.25 किलोमीटर जमीन चाहिए। खड़े हो जाएं तो ठीक है, आकाश तो बहुत है, जमीन बहुत चाहिए। यहां पर भी जब उत्तम भोग भूमि होती है या जघन्य भोग भूमि होती है तो 500 जघन्य भोग भूमि में 500 धनुष के मनुष्य थे ही। जघन्य भोग भूमि में हाईएस्ट ऊंचाई 500 धनुष। दो हजार काल के प्रारंभ में, दो हजार धनुष काल के प्रारंभ में, यानी जघन्य भोग भूमि की उत्कृष्ट ऊंचाई 2000 धनुष, जघन्य ऊंचाई 500 धनुष। तो हाँ, 500 भी ले लें तो 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर होता है वो। तो इतना जमीन एक व्यक्ति के लिए चाहिए, बैठ जाए तो कम से कम 0.5 किलोमीटर तो चाहिए। पालती मांडर के बैठ गए, 0.5 किलोमीटर चाहिए उनको। नहाने के लिए समुद्र में ही उतर गए तो पानी काय को चाहिए। पास में लवण समुद्र ही है। एक बार कूद करके आ गए, स्नान हो ही जाता है, लेकिन नमकीन पानी है वहां, स्नान नहीं करते वो। उनको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ध्यान में रखो, क्योंकि उनका शरीर सुगंध होता है, पसीना नहीं आता, तो स्नान की क्या जरूरत। ये सब हम लोगों के लिए हैं जो पाउडर लगाना बदबू मारने लग जाए शरीर, एक आर्यखंड वालों के लिए है। कुबो भूमि में कारण वहां जाति स्मरण है। हाँ, देवों का उपदेश मिल सकता है। हाँ, देव संबोधन, धर्म का उपदेश सुना के उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करा सकते हैं। जैसे तीसरे नरक तक जाते हैं तो यहाँ कुबो भूमि में भी जाकर के देव उपदेश दे सकते हैं। सम्यक दर्शन के बाह्य निमित्त हैं वहां भी। नहीं, मुनि कोई नहीं जाते। हाँ, 10 मिनट रह गया, अब शंका समाधान के लिए 10 मिनट मिल गए, लेकिन शंकाएं बीच बीच में पूछे ना, नियम का पालन कहाँ हुआ? थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। हाँ, एक पूरा हो गया ना। हाँ, ये इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, देखो डिटेल ज्ञान हो जाएगा। और विजयार्ध श्रेणी के विद्याधर यानी खेचर, 170 विजयार्ध पर्वतों के विद्याधर मनुष्यों में पर्याप्तक, निर्वृत्ति अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक, ये तीनों भेद हैं। ठीक है, ऐसा उसको पढ़ना है। नीचे विशेष है, 6 + 12 + 12 = 30, 30 भोगभूमि हैं। भोगभूमियों में गर्भज मनुष्य रहते हैं, समूर्चन नहीं रहते, समूर्चन मनुष्य नहीं रहते, और केवल संगी पंचेंद्री गर्भज थलचर थलचर नवचर त्रिंच रहते हैं। किंतु पंचेंद्री संगी असंगी समूर्चन पर्याप्तक अपर्याप्तक जलचर और पर्याप्तक संगी असंगी गर्भज पर्याप्तक जलचर त्रिंच जीव नहीं रहते। कहाँ पर? भोग भूमि में। एवं विकलत्रय जीव नहीं रहते, जैसे भोग भूमि का बताया था ना, वैसे कुभोग भूमि में समझना है। एवं विकलत्रय जीव नहीं रहते, विकलत्रय भी नहीं। इसी तरह छानव को भोग भूमियों में भी समझना चाहिए। कुभोग भूमि व सुभोग भूमि के मनुष्य और त्रिवेंचों में अकाल मरण नहीं होता। ये हो गया। यह एक टिप्पणी दी है, मनुष्यों में जीव समास के कुल 9 विकल्प हैं, 9 ही प्रकार के मनुष्य बनते हैं। नंबर दिया है वहां, देखो चार्ट में ऊपर। एक नंबर में क्या दिया है? आर्य खंडज मनुष्य। दूसरे में मिलेच्छ खंडज मनुष्य। ऐसे दो भेद हो गए, दो भेद हो गए। भूचरों में दो भेद हो गए, गिन के देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 1, 2, 2 ऊपर दिया है। मनुष्यों के भेद 2 + 1 + 2 + 2 + 2 इस प्रकार 9 होते हैं। वो कौन कौन से? 2-2 यहाँ पर चार्ट से समझना चाहिए। कर्म भूमिज भोग भूमिज 2, मिलेच्छ खंडज इसमें 2, खेचर 9 हो जाएंगे ना, मिलेच्छ खंड ऐसे 9 हो गए। ये 9 भेद मनुष्यों के हो गए। रुको रुको, आर्यखंड में पर्याप्तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तक ये 3 तथा मिलेच्छ खंड भोग भूमि कुभोग भूमि इन तीनों के पर्याप्तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक के भेद से पूर्वोक्त 3 ये कुल 9 जीव समास होते हैं। ये पीछे वाला पढ़ना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कल पढ़ेंगे इसको। आज कुछ शंका समाधान है तो 5 मिनट है और। चाहिए
और
श्रुत केवली के पास वज्रषभ नाराज सवनन हो नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ये ठीक है। श्रुत केवली बनने के लिए सहनन की जरूरत नहीं है, किंतु क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल आवश्यक है। तीर्थंकर केवली तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए तो केवली द्वय, केवली श्रुत केवली, केवली के पादमूल में ही बंधेगा ना। तीर्थंकर प्रकृति क्षायिक सम्यक्त्व के लिए कहा है, केवली श्रुत केवली के पादमूल में बंध सकता है, बन सकता है वो क्षायिक सम्यक्त्व। श्रुत केवली अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ने कैसे घटाएंगे? तीर्थंकर प्रकृति तो पहले से बांध करके लाते हैं ना, पूर्व से ही बंधा रहता है। तीर्थंकर प्रकृति तो बंध चुकी है, क्षायिक सम्यक्त्व का बोल रहे हैं क्या? क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट हो सकता है, श्रुत केवली के पादमूल में क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है उनको स्वयं को, क्यों हो सकता है ना, स्वयं ही श्रुत केवली हूं तो स्वयं ही प्राप्त करेंगे, किसी के पादमूल की जरूरत नहीं है। स्वयं श्रुत केवली हूं तो खुद ही क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वज्रषभ नाराज सनन वाला भी श्रुत केवली होना जरूरी है। श्रुत केवली को पहले सनन वाले होना जरूरी है, तो ही क्षायिक सम्यक दर्शन किसी के पाद मूल के बिना हो सकता है। देखो वो रिद्धि नहीं, कोई देव आकर के अपने विमान से ले गए ऐसा है, देव ले गए ऐसा है ना। ये कहाँ कहा है कि रिद्धि से गए थे वो, उस कथा में क्या कहा है, कथा मालूम है? पूज्यपाद आचार्य का भी जो कथा है वह कथा वो औषधि लेप से गए थे ऐसा है, रिद्धि नहीं, रिद्धियां होती ही नहीं पंचम काल में। औषधि रिद्धि अलग बात है, औषधि रिद्धि का मतलब ये है कि अपना शरीर ही औषधमय बन जाता है, जिस मुनि महाराज को यानी उत्तम सननधारी जिस मुनि महाराज को रिद्धि औषधि रिद्धि प्राप्त हो गई, उनका पूरा शरीर के सारे परमाणु औषधि के काम में आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो पुद्गल परमाणु हवा से आकर के मुनि महाराज के शरीर से टकराएंगे और वो टकराए हुए परमाणु दूसरे के शरीर किसी रोगी के शरीर से टकराएंगे तो उनका रोग ठीक हो जाएगा, इसको कहते हैं औषधि रिद्धि। हाँ वो तो जादू है, वो तो जादू है, जादू रिद्धि नहीं कहलाती। विद्या अलग और रुद्धि अलग, विद्या अलग रुद्धि अलग, ये विद्या है। जादू एक विद्या है ना, जादू भी एक विद्या है। जादूगर बनाता है कि नहीं, मिट्टी का सोना बनाता है, तो ऐसे पहाड़ को भी सोना बना सकता है जादूगर। आचार्य नहीं, वो तो देखो, हाँ वो आचार्य का कह रहे हैं क्या, शुभचंद्र आचार्य का, शुभचंद्र आचार्य का ये बता रहे हैं कि ऐसे पसीने को जो कर दिया तो सोना, सोने का बन गया, तो ये विद्या है। रिद्धि कैसे, ये विद्या है। विद्याएं प्राप्त हो सकती है तपश्चर्या के कारण से, विद्याएं प्राप्त हो सकती है, रुद्धि प्राप्त नहीं होती। रुद्धि प्राप्त हो गई तो छूटती भी नहीं। रुद्धि है ये, विद्या विद्या है। जो भी वर्तमान में दिखाई देता है ये सब रिद्धि मत समझो, ये सब विद्याएं। जादूगर एक जादू कर रहा है तो वो विद्या है, और आप भी कुछ करेंगे तो वो विद्या के कोटि में आएंगे। ऐसा मत समझना कि हमको रिद्धि प्रकट हो गई। रुद्धि नहीं, नजरबंदी भी विद्या ही है, रुद्धि नहीं है वो। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध।
वो रिद्धि